नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम करेंगे चुनावी परिचर्चा 2024 के आम चुनावों की। और जो मुख्य विषय हैं वो ये है कि बिहार में, आंध्र में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में तो एनडीए का जो गठबंधन है वो फाइनल हो चुका है। केजरीवाल बाबू जो हैं जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से हमारे भाई बहन जो हैं वो अपना लोटा डोरी लेके भाग चुके हैं। हमारे साथ हैं आज हर्ष कुमार जी, स्वागत है आपका। हर्ष जी
नमस्कार, धन्यवाद।
तो सबसे पहले तो यही से आरंभ करते हैं कि साहब ये अपना लोटा डोरी लेके भाग क्यों निकले? और मैंने अभी अभी देखा कि अखिलेश जी जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं कि भाई अमेठी से चुनाव लड़ो, नहीं तो हमारा सारा नैरेटिव खराब हो जाएगा।
अखिलेश यादव क्या अप्रोच करेंगे? अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी को टिकट दे रहे हैं, यहाँ से टीएमसी के टिकट दे रहे हैं भदोही की सीट से, तो अखिलेश यादव तो ख्यार क्या अप्रोच करेंगे। अखिलेश यादव की तो स्थिति ऐसी लग रही है कि होता है ना कि घर में कोई ऐसा प्रोग्राम फंक्शन हो कि आपके पास 10-5 लोग घर के होने चाहिए किसी भी कार्यक्रम को अरेंज कराने के लिए, इन्हें तो ढूंढने से वो भी नहीं मिल रहे हैं, दरी बिछाने वाले भी, तो ये कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे? मुझे लग रहा है कि कैंडिडेट का जो क्राइसिस है। और दूसरा, पहले क्या होता था कि जब यूपी में सपा और बसपा बिल्कुल ऊपर रहती थी और पावर में रहती थी, शक्ति का जो केंद्र था यही था, बीजेपी बाहर थी, तो उस समय क्या था कि उस समय लोग पैसा लेकर पहुंच जाते थे सपा का टिकट लेने के लिए। सबको लगता था कि यार हारे या जीते तो 1-2 पे तो रहेंगे ही। लेकिन यहाँ तो जब आदमी को ये उम्मीद है कि मुझे टिकट हारना ही हारना है, तो कोई टिकट ही लेने के लिए नहीं आ रहा है। अब कहने के लिए उन्होंने 17 सीट उन्हें दे दी कांग्रेस वालों को, उनके पास कहाँ कैंडिडेट है? अखिलेश यादव के पास गिनी हुई 5-7 सीटें हैं। बताइए, मेरठ जैसी सीट से पता नहीं किसको टिकट दे दिया, ये पता ही नहीं है लोगों को, वहीं ढूंढ रहे हैं लोग यार ये किसे टिकट दे दिया,
किसको दिया है? पास
वहां वो एडवोकेट साहब है, एक भानु प्रताप उनका नाम आया है,
हाँ।
तो उनको टिकट दे दिया, आपको जानता नहीं है, जबकि वहां एक अच्छा कैंडिडेट था इनके पास, अतुल प्रधान है जो सरधना से संगीत सोम को हराया था, जिसने वो बड़ा स्ट्रॉन्ग चुनाव लड़ने वाला था, और उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखकर बड़ा खेद भी जताया कि भाई चलिए मैं संघर्ष करता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो जब आपके अपने अच्छे लोग जिन्हें आपको आगे बढ़ाना चाहिए उन्हें आप टिकट नहीं दे रहे हो, दूसरी पार्टियों वालों के लिए सीट छोड़ दे रहे हो, भले ही सामने वाले के पास कैंडिडेट है या नहीं, तो अखिलेश यादव तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो बहुत खराब स्थिति में है। मुझे लग रहा है कि पिछली बार की तरह जो 5 सीटें आ गई थी वो भी आएंगी या नहीं, इसका भी कोई भरोसा मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और रही भाई बहन वाली बात, तो आप ये बताइए संजय जी, भाई बहन और अम्मा जी, ये तो 2019 के बाद से यूपी से विदा हो चुके हैं, पिछले 5 साल में है ही कहां ये, यहां राहुल गांधी के हारने के साथ ही विदाई तय हो गई थी। और पिछले साल भी, पिछली बार भी जब सोनिया चुनाव लड़ी थी, बड़ी बीमार थी, तबीयत खराब थी, कहां कैंपेन किया था, प्रियंका को भेजा था अपनी जगह कैंपेन करने के लिए, तो उस समय भी ये खबर थी कि सोनिया गांधी का लास्ट चुनाव है, और मेरे ख्याल में 5 साल में एक भी दिन नहीं गई है वो वहां पे रायबरेली में, तो ये तो ऑलरेडी 2019 से ही रन छोड़ हो चुके हैं गांधी परिवार वाले। तो इसलिए वहां बीजेपी प्रिपेयर है कि कोई भी कैंडिडेट आ जाए हम रायबरेली भी जीत लेंगे, और अमेठी तो इनकी अपनी पक्की है ही।
हाँ, अमेठी तो इनकी पक्की है ही, और अमेठी में तो कोई कैंडिडेट हुआ नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि पता चला है कि सुप्रिया श्रीनेत को कहा गया है अमेठी लड़ने के लिए।
मजा आ जाएगा। सुप्रिया, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की तो एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं जिन्होंने टिकट डिनाय कर दिए हैं, टिकट वापस कर दिए हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ने। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हर जगह से, अरविंदर सिंह लवली ने मना कर दिया है, अशोक गहलोत ने मना कर दिया है, कमलनाथ ने मना कर दिया है,
सचिन पायलट ने मना कर दिया है,
सचिन पायलट ने मना कर दिया है, और कई और एक मैं भूल रहा हूँ आज, आज किसी ने टिकट वापस किया है, कहां से, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने पिता की बीमारी की वजह से अपना टिकट वापस कर दिया कांग्रेस के एक कैंडिडेट ने। तो इसमें तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, सबको लग रहा है कि भाई हारना तय है कांग्रेस में। तो जो लड़ने में लोग इंटरेस्टेड हैं वो साउथ में ही है, कर्नाटक में, तेलंगाना में और केरला में, वहां पे इन्हें कैंडिडेट मिल रहे हैं, बाकी और जगह कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जब कैंडिडेट ही नहीं होगा तो फिर क्या सीन बन के सामने आएगा?
अब तो ये पता चल रहा है कि शशि थरूर तक रो रहे हैं।
शशि थरूर का शशि थरूर का दरअसल क्या है कि आपको याद होगा पिछली बार जो क्या हुआ था, पिछली बार आपको याद होगा कि शशि थरूर के सामने इन्होंने किसे उतारा था, मेघालय के गवर्नर थे वो के राजशेखरन, उनसे रिजाइन कराया गया था और उन्हें भेजा गया था शशि थरूर के सामने लड़ने के लिए। लेकिन राजशेखरन भले ही वहां के रहने वाले थे लेकिन वो मास लीडर नहीं थे, लोगों में लोकप्रियता नहीं थी। लेकिन राजीव चंद्रशेखर जो है दूसरी तरह का कैंडिडेट है। और सबसे मेन चीज है कि जो चुनाव लड़ने के लिए आजकल आवश्यकता होता है ना मनी, इसमें राजीव चंद्रशेखर का कोई तोड़ नहीं है। उसने तो अर्णब गोस्वामी का पूरा स्पॉन्सर कर रखा है, तो इस मामले में राजीव चंद्रशेखर का कोई तोड़ नहीं है। और पहले ही दिन मैंने उसके सोशल मीडिया पे जब वो पहुंचे टिकट मिलने के बाद, तो जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक मीटिंग की है और बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ जुट रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ यार इस बार बीजेपी ने किसी ठीक कैंडिडेट को टिकट दिया है। और ऑलरेडी एक सिटिंग पार्लियामेंट, मतलब कहना चाहिए कि राज्यसभा के सांसद तो हैं ही, और साथ ही साथ अभी तो मोदी जी की सरकार में मंत्री भी हैं और ठीक ठाक मंत्रालय उन्हें मिला हुआ है। तो जनता का भी थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाता है कि यार क्यों ना इस बार इस आदमी को आजमा लिया जाए। अपनी भाषा भी बोलना जानता है, अपने इलाके से आता है। तो शशि थरूर की हालत तो खराब होनी है, और शशि थरूर की तो हालत खराब होने में सबसे ज्यादा खुश ये अपने खड़गे और राहुल गांधी ही होंगे। चले चले अध्यक्ष बनने।
लेकिन साहब हालत तो राहुल गांधी की भी खराब हो रही।
हाँ राहुल गांधी की खराब तो है, लेकिन संजय जी एक बात और भी बताऊं मैं आपको, इस देश में राहुल गांधी के लिए वायनाड से सुरक्षित सीट है भी नहीं, आपको ही बता।
लेकिन वायनाड से उनकी समस्या आ गई है, क्योंकि वो एनी राजा को जो खड़ा कर दिया है, और लेफ्ट ने कहा है कि साहब इस बार हम पूरे दमखम से लड़ेंगे। और वहां जो उनकी जो की थी वो ये था कि साहब की
मुस्लिम लीग वाले
55% वोट वो मानते थे माइनॉरिटी का हमारा पक्का है, और लेफ्ट वालों का जो वोट था वो लेफ्ट वालों ने भी उनको मदद की थी। तो वहाँ 28% मुस्लिम है, 27% वहाँ पे, 27-26% वहाँ पे क्रिश्चियंस है,
क्रिश्चियन है।
अब वो क्रिश्चियंस के लिए तो उन्होंने एनी राजा खड़ी कर दी, वो क्रिश्चियन है, और लेफ्ट जो है वो कह रहा है कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, तो समस्या तो आ गई ना।
हाँ बिल्कुल साहब, और वो मुस्लिम लीग वाले भी कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अलग हो जाए, अभी उनका भी पता नहीं है कि वो किधर है, LDF में है, UDF में, उनका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। मुस्लिम लीग वाले भी बार्गेन कर रहे हैं, 4-4, 5-5 सीटें मांग रहे हैं वहां पे, ये भी तो है।
वो तो, ऐतिहासिक रूप से तो वो सदैव UDF में रहे हैं।
हाँ
मतलब ये भी कांग्रेस की अचीवमेंट हो सकती है कि वो मुस्लिम लीग जिसने भारत का विभाजन कराया, उसी मुस्लिम लीग को बाद में उन्होंने अपना UDF बना के उसको पार्टनर बना लिया, और वो मुस्लिम लीग जो है इनके बहुत सारे निर्णयों को प्रभावित करती है।
बिल्कुल सही बात है। और अभी अभी हम बात कर रहे थे शशि थरूर की, तो पता नहीं मेरे तो ध्यान नहीं पड़ता, क्या शशि थरूर का टिकट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं अभी?
शशि थरूर का टिकट तो डिक्लेयर हो गया,
हो गया
टिकट डिक्लेयर हो गया है। वो वहां से लड़ रहे हैं और वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये CPI वाले गुंडे जो हैं हमारे वर्कर्स को मार रहे हैं।
अच्छा 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 अच्छा,
लेफ्ट के गुंडे जो हैं वो हमको मार रहे हैं, लेफ्ट जो है वो ठीक काम नहीं कर रही है, वो लेफ्ट को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं और लेफ्ट उनका मजाक उड़ा रहा है।
अच्छा वो बीजेपी को वो टारगेट नहीं बना के चल रहे। वो
पिछली बार आपको याद हो, पिछली बार जब जो चुनाव हुआ था उसमें आखिरी मोमेंट में लेफ्ट ने अपने वोट इनको ट्रांसफर किए। इस बार लेफ्ट कह रहा है कि हम अब वोट अपने ट्रांसफर नहीं करेंगे इस पिछली बार।
सही बात है। हाँ लेफ्ट वाले भी चाह रहे हैं, दरअसल देखिए लेफ्ट वालों के लिए बड़ा झटका है कि सरकार बना ले रहे हैं और साहब लोकसभा में हार जा रहे हैं, लेफ्ट वालों के लिए भी दिक्कत है। लेफ्ट का तो पूरे इंडिया में जो सर्वाइवल है वो केरल पे ही टिका हुआ है, यहाँ नहीं जीतेंगे तो और कहाँ जीतेंगे, और यहाँ क्यों कांग्रेस वालों को जितवाएं भाई, क्या फायदा है कांग्रेस वालों को जितवाने से, क्योंकि मेन राइवल है वो तो उनके, तो उसे क्यों जितवाएंगे। भले ही बीजेपी जीत जाए कहीं एक आध सीट पे, तो कांग्रेस वाले क्यों जीते, तो कैंडिडेट तो उतरेंगे और वो तकड़ा होगा वहां पे मुकाबला। सही कह रहे आप, राहुल गांधी के लिए कमजोर स्थिति हो सकती है। लेकिन हम शुरुआत कर रहे थे ना वहां से, उत्तर प्रदेश से बहन भाई की। चलिए साहब सोनिया गांधी तो अस्वस्थ हैं, राहुल गांधी वायनाड शिफ्ट पिछली बार ही हो गए थे, प्रियंका गांधी क्यों डर रही हैं लड़ने से? अब आप बताइए, आपने तो नुपुर शर्मा को लड़वा दिया वहां से।
भाई
अब ये तो अब बिल्कुल भी नहीं जाएगी प्रियंका।
बीजेपी IT सेल वाले ही खबर फैला रहे थे, तो हमने तो उसको वहीं से पकड़ा, हमने कोई नई खबर तो कहीं से निकाली नहीं अपनी, आप देख लीजिए। बीडी बीजेपी आईटी सेल वाले
ये, ये, हैं, नहीं, नहीं, बता रहा हूं, दिल्ली में दो खबरें चल रही हैं क्योंकि दोनों का ही दिल्ली से ताल्लुक है। नूपुर शर्मा हार्डकोर एकदम दिल्ली की पॉलिटिक्स से आई हैं, स्टूडेंट लीडर थी आपको पता ही है डीयू में। और इसके अलावा एक और भी बड़ी चर्चा है दिल्ली में कि मीनाक्षी लेखी को किरण खेर की तरह की जगह चंडीगढ़ भेजा जा रहा है, ये भी एक खबर दिल्ली में चल रही है कि मीनाक्षी लेखी को टिकट आउट नहीं कर रहे हैं, उसे लूप लाइन में रखा गया है, तो किरण खेर के टिकट की बार रिप्लेस हो रही है वहां से, ये भी चर्चा बड़ी जोरदार है।
अच्छा, किरण खेर क्यों रिप्लेस हो रही?
किरण खेर एक तो कैंसर है, उन्हें बीमार है तीन साल से पिछले, तो उनका तो ट्रीटमेंट है, वो तो डेढ़ दो साल तक पूरे कोविड पीरियड में और उसके एक साल बाद तक वो आई नहीं पार्लियामेंट में एक भी दिन। अभी वो शायद उस दिन आई थी फर्स्ट टाइम जिस दिन वो वुमेन रिजर्वेशन बिल वाला आया था, उस दिन वो बहुत दिनों के बाद आई थी, और उनको तो लगभग एक डेढ़ साल तो ट्रीटमेंट के लिए वो अमेरिका रही, बाहर रही, यहाँ रही नहीं। फिर उसके बाद जब वो रिकवरी हो गई उनकी, अनुपम खेर ने कई बार वीडियो वगैरह भी डाले उनके बना के सोशल मीडिया पे, और जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ है उनका भी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो किरण खेर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो फिजिकली भी उतनी वो नहीं है तो वहाँ। और फिर थोड़ा सा किरण खेर चूंकि बॉलीवुड से आती हैं, बॉलीवुड स्टार्स के प्रति तो एक ही चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उनके तो दो चुनाव हो चुके, तो पार्टी चाहती है कि किसी ऐसे फेस को लाया जाए जो या तो महिला हो या कोई यंग हो, कोई सेलिब्रिटी हो, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे शहरी सीट है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह के फेस हैं तो सुनने में आया है। क्योंकि अभी सिविल सोसाइटी के कुछ प्रोग्राम थे एक दो दिन पहले, तो पंजाब में उनमें मीनाक्षी लेखी उसमें गेस्ट थी, उन्हें वहाँ स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, कई कार्यक्रम थे वहाँ पे, तो उसमें एक्टिव दिखाई दी वो, जैसे कि आपके यहाँ उसमें झालावाड़ वगैरह भी गई थी अभी मीनाक्षी लेखी, तो जो उनकी एक्टिविटीज हैं वो ऐसी नहीं है कि जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने टिकट कट गया तो कह दिया कि भैया मैं तो स्टेथोस्कोप उठा के अपना जा रहा हूँ अपने क्लिनिक पे, वहां बैठूंगा। मीनाक्षी लेखी ने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया, तो इट मींस हाईकमान से जो है उन्हें ऐसा इंडिकेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि दिल्ली में सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करें अगले साल, तो मीनाक्षी लेखी को एकदम साइडलाइन नहीं किया गया है। कंपेरेटिवली वो उतना उम्र के हिसाब से भी उतना वो नहीं है, अभी तो राजनीति के हिसाब से तो यंग ही है मीनाक्षी लेखी, और उनके जो फादर थे लेखी साहब संघ के वकील रहे, बड़े मुकदमे लड़े हैं उन्होंने संघ के लिए, आरएसएस के लिए 70s में 80s में, तो वकील फैमिली है, खुद ये भी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, तो इसलिए किरण खेर की जगह इनका नाम सुनने में आ रहा है, जैसे नूपुर शर्मा का चल रहा है उसी तरह से किरण खेर की जगह मीनाक्षी लेखी का नाम चल रहा है।
और राहुल गांधी के शक्ति प्रदर्शन पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो शक्ति से ही लड़ाई कर ली।
असल में क्या है राहुल गांधी, दरअसल क्या है, मुझे लगता है कि कोई उनके सलाहकार है नहीं, कोई उन्हें समझाता नहीं है चीजों को, कोई क्या नहीं, कहना
नहीं, मुझे तो उल्टा लगता है, मुझे लगता है कि ये, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये टिपिकली जो है वो लेफ्टिस्ट जो है वो इन्हीं मसलों पर काम करते हैं। आप देखिए जेएनयू में हर बार नवरात्रों को इसी प्रकार जो है वो माता दुर्गा के विरुद्ध अपशब्द कहे जाने और महिषासुर
चिकन बनवाने को लेकर
वाले
चिकन बनवाने को लेकर करते हैं वहां पे जेएनयू वाले,
ये सारे काम जेएनयू में जो होते हैं और जेएनयू वाले ही उनके आसपास हैं। तो सही बात तो ये है कि वो जो फीड करते हैं उसका दिमाग बेचारे का जितना है उतना है, और वही चीज वो बोल देता है।
नहीं तो फिर ये अगले दिन तो माफी मांग, कल तो उसने कहा है कि मेरा मतलब वो नहीं था।
अरे मतलब की क्या बात है, साहब बोल रहा है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, तो हिंदू धर्म में जब कहते हैं आप शक्ति को, तो हिंदू धर्म में तो शक्ति स्वरूपा माता की ही बात होती है, जो तत्व है, जो माता तत्व है सृष्टि में वही शक्ति है हिंदू धर्म में। आप ये कहते हैं कि हिंदी में एक शब्द है शक्ति, तब बात अलग थी, तब ये कहा जा सकता था कि भाई ये जो है ये ट्विस्ट कर रहे हैं। आप तो हिंदू धर्म में
हो सकता है कि लेफ्ट वालों ने बताया किसी और वजह से हो, इन्हें लेफ्ट वालों ने बताया होगा कि आप ऐसे बोलना और बात कुछ और हो गई हो। वैसे तो ये तो बात एक सर्वविदित है कि आजकल ये सीताराम येचुरी के साथ बैठते हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी है किसी को मानते नहीं है। राहुल गांधी सीताराम येचुरी की मानते इस समय और किसी की नहीं मानते, उनके हिसाब से वही सबसे प्रकांड पंडित हैं और सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं इस देश में। तो हो सकता है कि वहीं से आया हो इसका टिप उन्हें।
हाँ तो भाई बाकी तो उनके जो भी इश्यूज हैं वो तो सारे वही हैं, ईवीएम है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, जीएसटी है, सारे इश्यूज तो हैं जो सारे पिटे पिटे
इलेक्टोरल इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो संजय जी एक बड़े मजेदार बात है जो मैंने अपने चैनल पे भी एक दो वीडियोस पे बनाए हैं। अच्छा पहले वाली जो लिस्ट आई तो उसमें तो टीएमसी नंबर 2 हो गई, और फिर ये जो दूसरे वाली लिस्ट आई है जो 11 दिन की आई है वो 1 से 11 अप्रैल वाली, उसमें डीएमके को इतना चंदा मिल गया। तो ये तो राहुल गांधी की भी बड़ी बेइज्जती है भाई। चंदा तो उसे ही मिलता है ना जिसे लोग पावर देखते हैं कि यार साहब ये पावर में आने वाला है। अब जैसे इन्हें सबसे ज्यादा चंदा कब मिला, अप्रैल 2019 में, मार्च अप्रैल 2019 में कांग्रेस को, तो उस समय तो ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के राहुल गांधी, और लोगों को ये लग रहा था, मेरे ख्याल में डोनर्स को भी ये लग रहा था कि भाई मोदी यार ये 2014 में तो तुक्के में बन गया, अब की बार तो ये आएगा नहीं, तो कांग्रेस में पैसा लगाओ। तो मुझे तो लगता है उस हिसाब से भी राहुल गांधी की बड़ी बेइज्जती हो रही है कि साहब इनसे ज्यादा लोग ममता को पैसा दे दे रहे हैं, स्टालिन को पैसा दे दे रहे हैं वहां साउथ में, और कांग्रेस बताइए दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंच रही है चंदा लेने में भी।
बिल्कुल वो तो हो रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला इनके उल्टा पड़ने वाला है, आप देख ही रहे हैं। जैसे ही ये है वो पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, और वो जब आएगा उनके जो नंबर्स वगैरह आएंगे ना तब पता चलेगा कि ये जितने भी टॉप वाले जो है। अब आप फ्यूचर गेमिंग का आपने देख ही लिया,
फ्यूचर गेमिंग वाला वो तो सारा उसने तो अपने कुछ 1000 करोड़ में से 600 कुछ करोड़ तो उसने डीएमके को दिए हैं, अकेले
डीएमके को दिए। हाँ तो ये जो पूरा नैरेटिव है ये तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दूसरी बात वो करते हैं साहब,
देखिए आपसे मैंने एक चैनल पे हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके पहले भी चर्चा की थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि भाई सारी डिटेल दो, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान छोटे दलों का होगा, उन्हें नहीं मिलेगा, कांग्रेस बीजेपी टीएमसी इनको तो फिर भी मिलता रहेगा, लेकिन ये देखो ना समाजवादी पार्टी 1 करोड़ दिया है किसी ने समाजवादी पार्टी को, इनकी सबसे बड़ी खराब स्थिति होगी। वो कह रहे हैं कि 1 करोड़, पता नहीं वो 1 करोड़ या 10 करोड़ का कोई एक बॉन्ड है, वो कह रहे हैं कि हमारे ऑफिस में कोई छोड़ के चला गया ऐसे ही और हमने कैश करा लिया, या किसी ने बाई पोस्ट भेज दिया और हमने कैश करा लिया, ये स्थिति है इन लोगों की। तो नुकसान इन पार्टियों को होगा कायदे से। आज तो ये लोग खुश हो रहे हैं कि साहब मोदी को इतना मिला, और मैं तो देखिए मेरा तो मानना ये है कि अगर आप रेशो की बात करें तो एक राज्य की वो देखे ना बीआरएस कितना पैसा मिला बीआरएस को, एक राज्य की जहां पे 17 लोकसभा सीटें हैं, 118-119 विधानसभा की सीटें हैं, उन्हें 600 करोड़ मिल रहा है, और बीजेपी को अगर 6000 करोड़ मिला है तो वो तो कुछ भी नहीं है।
अब आपके जो मित्र हैं विशेष मित्र जिनसे आपका बहुत लगाव है, अंजुम साहब,
अरे वो तो उसने ट्वीट कर दिया था, वो तो फंस गया है उसमें वो
दूसरे हमारे सत्य हिंदी वाले जो असत्य भाषी हमारे आशुतोष जी, आप जरा उनकी स्थिति देखिए। मैं आपको अजीत अंजुम के पिछले 2 दिन के आपको हेडलाइंस बता दूं। ईवीएम हैकिंग पर झूठ बोल रहा है आयोग, अजीत अंजुम। फिर मोदी पर राहुल के तीखे वार, भ्रष्टाचार से लेकर ईवीएम पर घेरा, शक्ति का नाम नहीं लिया यहां। ईवीएम टेम्परिंग पर मुख्य चुनाव आयुक्त के दावे का प्रशांत भूषण ने यूं दिया जवाब। फिर सुनिए, पूर्व चीफ जस्टिस ने चुनावी बॉन्ड पर क्यों की एक्सपर्ट कमेटी की मांग, सीजेआई चंद्रचूड़ ने तो आज कमाल कर दिया, शुक्रिया मी लॉर्ड। पीएम मोदी क्यों मांग रहे पाकिस्तानी से चुनाव में समर्थन। कुछ भी
चला जा रहे हैं, कोई इलॉजिकल बातें हैं इनकी, और वो इन्होंने वो
एक तो घंटे पहले क्या चलाया इन्होंने इनको। अब जो कष्ट है वो सबसे बड़ा कष्ट है लोगों को ये है कि एनडीए ने अपने सारे के सारे चुनावी गठबंधन सफलतापूर्वक कर लिए। हाँ। अब कह रहे हैं मोदी की यूज एंड थ्रो वाली पॉलिटिक्स के शिकार बने चाचा भतीजे की मौज। और असत्य हिंदी क्या हो रहा है,
पासवान के बारे में कहा होगा।
वो पारस जो है ना, वो पशुपति पारस, उसके पास एक वोट नहीं है खुद का।
हाँ
बिहार एनडीए में क्यों मचा है घमासान? लीजिए साहब, बिहार एनडीए में घमासान से भी इनको बहुत समस्या है। और बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा, नीतीश के सामने बीजेपी का सरेंडर।
और अब कैसे सरेंडर हो गया, सीट तो कम मिल रही है नीतीश को, तो बीजेपी ने सरेंडर कहां कर दिया भाई, वो तो एक सीट ज्यादा ही ले रहे हैं उनसे। ये तो ऐसी बेफजूल की चीजें चलाते रहते हैं। देखिए ये जितने भी हमारे मित्र लोग हैं, जिन्हें आप मेरा मित्र बताते हैं, इनके पास चार पांच लोग हैं जो इन्होंने पकड़ लिए हैं। आपको याद होगा कि एक साल पहले कौन थे इनके पास, रघुराम राजन थे, सतपाल मलिक थे, योगेंद्र यादव थे। अब ये इनके लेटेस्ट जो है इसमें ये लोग बन गए हैं, ये जो आपने अभी नाम लिया किसका, वो प्रशांत भूषण, और दो तीन और लोग हैं इस तरह के जो इन्होंने पकड़ लिए हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जो है वही रास्ता अख्तियार कर लिया है, वो कभी द वायर पे आने लगा है, कभी द प्रिंट पे, फलाना ढिमकाना, उनके इंटरव्यू लेने इन्होंने शुरू कर दिए हैं, और पहले यशवंत सिन्हा हुआ करते थे। तो ये तो अपना ढूंढते रहते हैं कि कहीं इस तरह का कोई मिल जाए जो मोदी को गाली दे दे, और जब कोई मोदी के साथ रहने वाला मिल जाता है तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है कि साहब सतपाल मलिक और सुब्रमण्यम स्वामी तो लंबे समय तक मोदी के साथ रहे, तो इससे बड़ा खुश हो लेते हैं ये, और क्या करें, दिलासा ही दे रहे हैं। और आपने बात बिल्कुल सही कही है कि ये फ्रस्ट्रेशन भी है कि जितने भी कील कांटे थे इनके, इन्होंने सारे के सारे अपने दुरुस्त कर लिए हैं, और इन्होंने जितने जहां जहां पर इनके गठबंधन होने थे, सारे के सारे गठबंधन इन्होंने अपने इंटैक्ट कर लिए हैं। बिहार एकदम सेटल हो चुका है, और महाराष्ट्र सेटल हो चुका है। महाराष्ट्र में तो शायद मुझे लग रहा है कि आजकल में लिस्ट भी जारी होने वाली है महाराष्ट्र की, तो दिक्कत तो होनी है। और आंध्र प्रदेश में टीडीपी भी हो गया है, तो दिक्कत तो इनको होनी है, और क्या बनाएंगे ये वीडियो बनाने का।
महाराष्ट्र में विशेष तौर से 31 सीटें जो है वो भाजपा लड़ने जा रही है।
जी बिल्कुल।
और 13 सीटें जो है वो शिंदे की पार्टी को मिली है, और 4 सीटें जो है वो
मिली है
भतीजे को मिली है, भतीजे पवार को मिली है।
बिल्कुल।
तो ये जो ये भी बहुत मुझे लगता है लाभकारी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अत्यंत लाभकारी सौदा है ये।
बिल्कुल सही बात है। और वहां देखे ना वो एमबीए वाले क्या कह रहे हैं, ठाकरे ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा 22 सीटें तो मैं लड़ूंगा, कांग्रेस को 16 दूंगा और एनसीपी को 10 दूंगा, शरद पवार वाली को। और कांग्रेस ये कह रहे कि नहीं साहब हम 18 लड़ेंगे, तुम अपनी 2 सीटें और कम करो। और ये भी है उन्होंने, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो सीटें आप हमें दे रहे हो वो बुरी तरीके से पिछली बार आ रही हुई सीटें हैं, जैसे वो वहां से लड़ी थी, कहां से, मुंबई नॉर्थ वाली, वो जो उर्मिला मातोंडकर लड़ी थी पिछली बार गोपाल शेट्टी के सामने, 4,65,000 से हारी थी वो, वहां सारे गुजराती मारवाड़ी कहते रहते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि साहब यो वाली सीट हमने आपको दी कांग्रेस को, कांग्रेस कह रही है यार सारी हारने वाली हमें दी जा रहे हो, जहां पे चांसेस है वो अपने आप ले रहे हो, तुम्हारी तो मेन पार्टी है शिवसेना का तो मेन गढ़ मुंबई है, मुंबई की सीटों पर तुम लड़ो, हमें दो इधर की गांव देहात की बाहर की रूरल की। तो उधर उधर उथल पुथल की स्थिति है, एनडीए वाले तो खैर सेटल हो चुके हैं जहां तक मुझे लग रहा है, टिकट डिक्लेयर होना बाकी है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ये तो आंध्रा का भी सेटल कर लिया, तमिलनाडु का सेटल करना बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है।
हाँ, इसमें संजय जी एक चीज और मुझे समझ में नहीं आई, तमिलनाडु का चुनाव फर्स्ट राउंड में क्यों रखा इन्होंने 19 अप्रैल को?
तमिलनाडु का चुनाव फर्स्ट राउंड में क्यों रखा है? अब ये तो साहब इलेक्शन कमीशन के दुनिया भर के कैलकुलेशन होते हैं, उसमें क्या रखा है इन्होंने उसमें मुझे नहीं
कैलकुलेशन नहीं है इसमें। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि लगभग पिछले 2 महीने से मोदी जी साउथ में ही घूम रहे हैं राम मंदिर के समय से ही, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार की तरफ से भी कुछ इंडिकेशन होगा। ये सरकार से पूछे बिना तो हो नहीं सकती ना चीजें, कहीं ना कहीं सरकार भी तो अपनी कुछ चलाएगी ना कि भाई हमें वहां का चुनाव पहले चाहिए।
तो क्या है वो तो सरकार का तो ये रहता है ना कि भाई कहां पे वो अपने जो देना होता है उनको फोर्सेस कहां पे कैसे देगी उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है।
नहीं देखिए इसमें कार्यक्रम में जैसे हिमाचल का जो है आखिर में रख दिया सबसे लास्ट में 1 जून में, क्यों? क्योंकि वो जो 6 विधायकों वाला जो था मामला, उनकी अयोग्यता वाला मामला चल रहा है, वो भी कोर्ट में पहुंच गया है, तो क्या पता कोर्ट कोर्ट में कुछ सेटलमेंट हो या कोर्ट कोई और डायरेक्शन दे, तो इसलिए उसको वेट में रखा गया है, बाद में रखा गया है, जल्दी नहीं रखा गया। लेकिन तमिलनाडु का मुझे लगता है कि मोदी जी पहले ये देखना चाहते हैं कि जो उन्होंने मेहनत की है साउथ में, खासतौर से तमिलनाडु में और केरल में जो उन्होंने मेहनत की है, उसमें से उन्हें क्या आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि मतदान हो जाने के बाद फीडबैक तो मिल ही जाता है कि खाता खुल रहा है कि नहीं, तमिलनाडु में कितनी सीट मिल रही है कि नहीं। और अभी मुझे लग रहा है कि ये जो लिस्ट अभी
वो ऐसे, इसको अगर आप देखें ना तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता, क्योंकि तमिलनाडु फर्स्ट राउंड में है और केरला और साउथ कर्नाटका जो है वो सेकंड राउंड में है।
हाँ, ये सब दूसरे तीसरे राउंड में है, तेलंगाना तीसरे राउंड में है,
सेकंड राउंड में है, फिर थर्ड राउंड में नॉर्थ कर्नाटका है और फोर्थ राउंड में आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना है। तो ये है सब लाइन से ही। अब इसको जो है आप कह सकते हैं कि भाई, क्योंकि साउथ की जो फोर्सेस है ना, वो साउथ से ही ये निकाल के देंगे, वही फोर्सेस जाएंगी, जो इनका वो बनता है ना लॉजिस्टिकल प्लान, जो लॉजिस्टिकल प्लान बनता है, उस लॉजिस्टिकल प्लान में एक सेट ऑफ फोर्सेस जो है वो अलग अलग राउंड में घूमती हैं। तो आप ये देखें कि जो इन्होंने फर्स्ट राउंड में जो बनाया है वो तमिलनाडु पूरा हो जाएगा, सेकंड राउंड में इन्होंने केरला और साउथ कर्नाटका रखा है, तो वो लगभग हो जाती हैं 30 सीटें वो हो जाती हैं। फिर थर्ड राउंड में इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने नॉर्थ कर्नाटका और आपका साउथ वेस्ट महाराष्ट्र रखा है लगता हुआ दोनों, तो वो करीब 30 सीटें हो जाती हैं। फिर ये उन्हीं फोर्सेस को फिर ये भेज देंगे तेलंगाना और यहाँ पर।
पिछली बार क्या था संजय जी, मैं देख रहा हूँ सामने कि पिछली बार तमिलनाडु में हुआ था सेकंड राउंड में फेज टू में 18 अप्रैल को, और फर्स्ट राउंड में हो गया था तेलंगाना में 11 अप्रैल।
तो वही उल्टा हो गया, तो वो ऐसी कोई मुझे इसमें कोई बहुत विशेष नहीं लगता, क्योंकि वो सेम सेट ऑफ फोर्सेस घूमती है। अब उसके बाद वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि उसके बाद उससे लगता हुआ पांचवें राउंड में कुछ नहीं है फिर। पांचवें राउंड में फिर उसके बाद जो है वो लगता हुआ फिर बॉम्बे और उसके आसपास का जो एरिया है उसकी करीब 20-21 सीटें वो ले रहे हैं, बॉम्बे की 6 सीटें और आगे की थाने कल्याण 8 सीटें, बॉम्बे ग्रेटर बॉम्बे की 10 सीटें बनती हैं पूरी, वो पूरा ग्रेटर बॉम्बे है और आपका इधर नासिक और ये इसके आसपास वाला एरिया है और उधर ओडिशा का है। तो ये इधर वाली फोर्सेस ओडिशा में चली जाएंगी और इधर की ये इधर चली जाएंगी, ये इस तरह से मूवमेंट होगा इनका। और ये आपके अलग अलग, ये समझिए कि 4 या 5 सेट ऑफ फोर्सेस या 6 सेट ऑफ फोर्सेस ये बनाएंगे, वही 6 सेट ऑफ फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग घूम के मैनेज करेंगे, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो राउंड बाय राउंड मूव करती रहती है।
हाँ, सही, इस तरह से होता है, इसलिए बीच में 5-5, 6-7 दिन का गैप रहता है।
हाँ जी, हाँ जी। और आप देखेंगे सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के बीच में 11 दिन का गैप है।
हाँ, सही बात है,
सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के बीच में ज्यादा दिन का गैप है। प्लस जो ये जो नक्सल प्रभावित एरिया है यहाँ पर, ये थोड़ा विशेष ध्यान और भी देते हैं,
महाराष्ट्र में गढ़चिरौली वगैरह इस तरफ का जो इलाका,
महाराष्ट्र का गढ़चिरौली का एरिया है, छत्तीसगढ़ का बस्तर का एरिया है, आपका उड़ीसा का लगता हुआ एरिया है, तो ये सब जो है ये अलग अलग इसको ये करते हैं
जी।
तो गढ़चिरौली वाला जो एरिया है वो पहले राउंड में है, आपके सॉरी बस्तर का इधर जो है वो ये लगता हुआ एरिया और गढ़चिरौली वाला एरिया, ये नक्सल प्रभावित एरिया एमपी के, महाराष्ट्र के और बस्तर के, ये पहले राउंड में है।
पिछली बार भी अभी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी ये जो नक्सल वाला इलाका था ये सारा ये पहले राउंड में ही कर दिया था इन्होंने।
तो ये इस प्रकार से चलेगा। सबसे जो मुझे जब सबसे आश्चर्य ये होता है कि जैसे मैंने भी आपको कहा कि तमिलनाडु और आंध्र का जो अलायंस सिक्योर किया है वो ये दिखाता है कि पूरा का पूरा जो आपका नॉन कांग्रेस जो दुनिया है वो ये मान गई है कि आएगा तो मोदी ही।
हाँ, वो मोदी के साथ चलने में ही भला है।
जिस तरह से पीएमके जो है, पीएमके 6% वोट कमांड करती है विशेषकर नॉर्थ तमिलनाडु में, तो वो लगातार एडीएमके से, अन्ना डीएमके से और भारतीय जनता पार्टी से नेगोशिएशन में थी, लेकिन अंततः उसने तय किया कि भाई हम बीजेपी के साथ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि एडीएमके को अब टच करने वाला कोई नहीं, अब खाली एक डीएमडी के रह गई है, वो भी शायद इधर ही आ जाएगी, तो फिर तो आप देखिए कि एडीएमके समाप्त होने वाली।
सही बात।
और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी सेकंड पोल बनके अगर उभरेगी तो आप 2026 में ही कमाल देख सकते।
बिल्कुल सही बात है। और ये आप उस, मैं तो सबसे ज्यादा चीजें किस पे देखता हूँ, मेरे तो ये कमल हसन पे बड़ी नजर रहती है। ये जो राहुल गांधी के साथ यात्रा वातरा में चल रहा था, बताइए कमल हसन में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़ सके। ये एमएलए का चुनाव हार चुका है कमल हसन, और अब ये सुनने में आ रहा है कि इसे राज्यसभा का आश्वासन मिला है कि आपको राज्यसभा से भेज देंगे, डीएमके ने कहा है स्टालिन ने कि तुम्हें राज्यसभा से भिजवा देंगे। कितनी खराब हालत है इन लोगों की, कहने के लिए इतने बड़े सुपरस्टार हैं, क्राउड इनके पीछे हैं, इनके नाम के मंदिर बने हुए हैं, ये हाल है इनका
जी। बिल्कुल सही है। और थोड़ा केजरीवाल की बात कर ले साहब, केजरीवाल जी का तो चक्कर और भी बुरा फंसता चला जा रहा है। क्या हो
रहा है? बुरा फंसता चला जा रहा है साहब, दिल्ली जल बोर्ड वाला जो है, असल में संजय जी दिल्ली में ये बहुत बड़ा रैकेट है। और मैं आपको बताऊं कि अभी आम आदमी पार्टी का एक विधायक है, मैं उसका नाम भूल गया, क्या नाम था उसका, अर्जुन मारवा, क्या अजीब सा नाम था उसका, भूल गया मैं, अभी वो अरेस्ट हुआ है। एक ये जो दिल्ली में क्या है कि दिल्ली जल बोर्ड जो है टैंकर के थ्रू पानी सप्लाई करता है बहुत सारी जुगड़ झोपी जो इलाके हैं, तो वाटर टैंक्स होते हैं, और ये बड़े बड़े इनमें जो एक तरह से माफिया लोग इसमें एक्टिव हैं, इनके ठेके जो है और वो खरबों रुपए के छूटते हैं, तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। इसी को लेके वो मर्डर भी हुआ था, एक डॉक्टर साहब थे वो दिल्ली के, वेस्ट दिल्ली के कहाँ के, उनके उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था और वो मर्डर हुआ, और उस मर्डर में जो है इसका नाम आया आम आदमी पार्टी के एमएलए का। तो ये आम आदमी पार्टी वालों ने दिल्ली जल बोर्ड, ये शराब घोटाले से भी बड़ा स्कैम है दिल्ली जल बोर्ड का। आपको ध्यान होगा कि राघव चड्ढा जब था इसका चेयरमैन, जब भी ये बात हुई थी, अभी सौरभ भारद्वाज था तब भी ये बात चली थी, तो अभी ये जो लेटेस्ट ईडी का समन हुआ है वो दिल्ली जल बोर्ड वाले में ही हुआ है इनका। और ये जो अभी चर्चा कल आई थी जिसमें सोशल मीडिया पर ये भी चला कि अरविंद केजरीवाल की नेक्स्ट गिरफ्तारी होगी, और ईडी ने यह कहा है कि साहब हम हाई प्रोफाइल एक गिरफ्तारी करने जा रहे हैं, ये सूत्रों से खबरें कल से ही चल रही हैं। मुझे तो लग रहा है कहीं ये फर्स्ट राउंड से पहले ही केजरीवाल का राउंड पूरा ना हो जाए।
मैं तो देखिए अभी तक मान के चल रहा था कि, और मैंने इस पर कल वीडियो भी किया है, मैं तो भविष्यवाणी की है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर के पहले जो है गिरफ्तार नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से कल जो है वो स्टेटमेंट दे दिया ईडी ने, और स्टेटमेंट में ये लिख दिया कि ये 100 करोड़ रुपए जो है ये कविता ने आगे दिए थे मनीष सिसोदिया को, और अरविंद केजरीवाल का पहली बार नाम ले लिया एज अक्यूज्ड। क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे, केजरीवाल यही तो पूछ रहे थे कि आप किस कैपेसिटी में मुझे बुला रहे हैं। स्पष्ट हो गया आपको अक्यूज्ड की कैपेसिटी में बुला रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। तो मुझे तो लग रहा है अरविंद केजरीवाल का ज्यादा दिन होंगे नहीं, और ये शायद ये भी एक ऐतिहासिक होगा कि चुनाव के दौरान ये जो है एमसीसी का ध्यान न रखते हुए केजरीवाल को अंदर कर दिया जाए। इसमें तो संजय जी कोई एमसीसी नहीं लागू होगी ना।
एमसीसी लागू क्यों नहीं हो सकती, वो इलेक्शन कमीशन के डिस्क्रिप्शन पर है। इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि साहब आप चुनाव प्रभावित कर रहे हैं और ईडी के डायरेक्टर को चेंज कर दे।
लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो संधु भेजा है ना, ये बहुत बवाली आदमी है।
मैं आपको ब्यूरोक्रेसी का सीक्रेट बताता हूँ, सुनिए। चुनाव के टाइम पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये देखती है कि भाई ये जो एक कोई काम है इसको ना करने में कम खतरा है या इसको करने में खतरा है।
हाँ, तो सबसे वो वाला ऑप्शन चुना जाए,
तो इसलिए अधिकतर यही होता है कि साहब इसको ना करने में ही कम खतरा है इसलिए इसको टाल दो। हर चीज को ब्यूरोक्रेसी टाल देती है कि भाई चुनाव के बाद देखेंगे, चुनाव तक खतरा है, मान लीजिए पता नहीं कोई शिकायत कर दे, मान लीजिए कोई
कोर्ट आ जाए बीच में,
कोर्ट नहीं अभी बीच में आता, उसमें वो इलेक्शन कमीशन का ही होता रहता है, इलेक्शन कमीशन में भी दुनिया भर की शिकायतें जाती रहती है ना, और वो शिकायतों पर कोई जो है वो ले लें, हमारे भाई बंधु होते हैं उनमें से कोई जो है वो अपना साहब की पुरानी कोई खुंदक निकालना निकालने लगे
फला अधिकारी से,
तो इसलिए साहब वो पूरा मामला जो है वो शांति का होता है, ये पूर्ण शांति से ऑब्जर्व किया जाता है ये पीरियड, शांति से निकालो इसको, शांति नहीं होगी तो समस्या हो जाएगी।
तो आपने अपने उसी अनुभव से कहा है कि केजरीवाल सितंबर तक गिरफ्तार नहीं होगा?
मैं ही कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर भी है, ये पावर है कि वो ईडी के डायरेक्टर को हटा दे।
हाँ वो तो है, चुनाव चुनाव के समय तो बहुत पावर है, फिर तो उसे कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते।
ईडी का डायरेक्टर जो है वो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है केजरीवाल को गिरफ्तार करके, इसलिए इसको हटा दो। ईडी का डायरेक्टर जो है इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट लेके बैठा हुआ है, वो तो बेचारा जो है वो हर वक्त उसकी भी जान सांसत में रहती है, वो इलेक्शन कमीशन से, देखिए सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इलेक्शन कमीशन से डरते हैं बता दूं आपको। तो सुप्रीम कोर्ट में तो नोटिस होगा, हियरिंग होगी, सब कुछ होगी, कुछ होगा,
डेट लगेगी,
वकील भी खड़ा होगा,
फिर हियरिंग पे आएगा,
सकते हो आप अपॉलॉजी करके बच सकते हो, यहाँ तो सीधे बिना पूछे जो मर्जी आए वो कर देते।
हाँ वो कल किए तो है, छह हटा तो दिए, वो सेक्रेटरी और वो डीजीपी वहां के सब जगह के सब हटा दिए,
उनमें से चार तो बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है,
बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात,
उत्तराखंड
और उत्तराखंड।
और ये उत्तराखंड से तो ये खुद आए अभी संधु, सुखविंदर सिंह संधु जो आए हैं इलेक्शन कमिश्नर, अभी उत्तराखंड से आए, यूसीसी वाला मामला पूरा सेट करके आए वहां पे। तो देखिए चुनाव आयोग में आते ही पूरा उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी।
तो भाई ये समस्या जो है वो तो रहेगी
जी,
बिल्कुल रहेगी। अब आप पंजाब का बताइए साहब, पंजाब का क्या लग चल रहा है? अभी तक पंजाब का कोई क्लैरिटी नहीं आई।
पंजाब बड़ा देखिए 13-13 सीटें हैं संजय जी, और पंजाब जो है महाराष्ट्र और बिहार से भी ज्यादा बड़ा भयंकर, मतलब महाराष्ट्र और बिहार से भी ज्यादा फंसा हुआ है पंजाब का मामला। तो अभी ये अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ ये अभी इनसे अकालियों से बात जो है बीजेपी की अमित शाह ने मना कर दी, अब इसका जो चुनाव रख दिया मेरे ख्याल में इसका भी छठे या सातवें चरण में है पंजाब का भी चुनाव,
पंजाब का लास्ट राउंड में, पंजाब और हिमाचल लास्ट राउंड में।
हाँ पंका पंजाब हिमाचल लास्ट में है, और नहीं नहीं हिमाचल और हरियाणा लास्ट में है, पंजाब सेकंड लास्ट में है शायद, ऐसा है। हाँ तो अब
हिमाचल सिक्स्थ, सॉरी हरियाणा सिक्स्थ में है और
अच्छा हरियाणा सिक्स्थ में है, हाँ पंजाब और हिमाचल वो सेवंथ में,
सेवंथ में।
हाँ तो इसमें मुझे लग रहा है कि अकालियों वकालियों के बारे में जो है अमित शाह ने सोचा होगा कि यार अप्रैल के बाद सोचेंगे इनसे, अभी अभी तो उससे पहले तीन राउंड अभी निकालने हैं चुनाव के, तीन या चार राउंड, तो उसका नॉमिनेशन वगैरह भी जो है वो कभी शुरू होंगे वहां पे, मई के महीने में शुरू होंगे नॉमिनेशन भी। तो पंजाब में तो क्लियरिटी नहीं है कुछ भी, अभी तो फोर कॉर्नर फाइट लग रही है, अभी तो ये लग रहा है कि अकाली बीजेपी भी लड़ेंगे अलग अलग, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अलग अलग लड़ेगी, और उसने तो अपना खेल शुरू कर दिया, उसने वो सिंगर विंगर डांसर वांसर उन सबको टिकट देने शुरू कर दिया है भगवंत मान ने, एक और वो कॉमेडियन है वो अनमोल क्या नाम है उसे टिकट दे दिया उसने, बड़ा विरोध हो रहा है इसका वहां पंजाब में, अरे भाई ये किसे उठा लाए बाहर से, कहां से ले आए, उसने कहा कि नहीं ये कॉमेडियन है मेरी तरह ही, उसको टिकट दे दिया, चार पांच मंत्रियों को टिकट दे दिया अपनी सरकार की। वो पंजाब का तो कुछ स्पष्ट नहीं है, मुझे लग रहा है कि पूरे अप्रैल के महीने में भी स्पष्ट नहीं होगा, बीजेपी को और अकालियों को साथ आना पड़ेगा इसमें, वरना बनेगी नहीं इनकी बात। वैसे आज
तो
पंजाब
को लॉन्ग टर्म में तो इनको जो है वो अकालियों को टिक कर देना चाहिए, अकालियों का भविष्य कुछ है नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये फ्यूचर की पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं ना पंजाब के बारे में, जैसे कि वहां पे हो रहा है महाराष्ट्र में, और आज जो है अभी ये जो अमेरिका में वो राजदूत रहे हैं तरणजीत सिंह,
तमिलनाडु में इन्होंने एडीएमके को छोड़ दिया ना, तमिलनाडु में एडीएमके से बात ही नहीं की, उसी तरह से यहाँ भी इनको कोई बात करने की आवश्यकता है नहीं मुझे लगता।
आज पंजाब की एक ज्वाइनिंग भी हुई है, तरणजीत सिंह संधू हैं जो वहाँ वो रहे हैं एम्बेसडर वहाँ पे अमेरिका में, वो रिटायर्ड है और उन्हें ज्वाइनिंग कराई गई है। सुनने में आ रहा है कि ये अमृतसर वाली सीट से इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, ये कई महीनों से वहाँ एक्टिव भी है, जिसमें पिछली बार हरदीप सिंह पुरी हार गए थे, उससे पहले अरुण जेटली हार गए थे। वो सीट बीजेपी के लिए बड़ी टफ है, तो ये वहीं के रहने वाले हैं सुनने में आ रहा है। आज ज्वाइनिंग हुई है इनकी अभी अभी।
वहां से सिद्धू 3 बार जीता था।
हाँ जी हाँ
बीजेपी के टिकट पे।
हाँ सिद्धू था ना, तो बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला ना। आप बताइए ना, आप दिल्ली से अरुण जेटली, हरदीप सिंह पुरी को दिल्ली से भेज दोगे तो वहां कैसे लोग उसे मंजूर करेंगे।
अरुण जेटली का अजीब ही किस्सा है साहब। अरुण जेटली राजस्थान से चुनाव लड़ने आ रहे थे, अलवर की सीट उनके लिए फिक्स हो गई थी और प्रकाश सिंह बादल जिद करके उनको ले गए कि मैं जिता के लाऊंगा।
हाँ यही कहा जाता है कि बादल साहब ने वायदा किया था कि हम जो है जिता
देंगे, तो जिद करके ले गए थे, नहीं आप उधर से लड़ो, आप अमृतसर से लड़ो। अरे
और वहां पे क्या हुआ था फिर, वहां कैप्टन ने कहा कि मैं देखता हूँ कैसे जीतने देते हैं, वहां कैप्टन खुद उतर गया था सामने, तो कैप्टन से तो आ रहे थे ये जेटली।
एक्चुअली पंजाब में जो कैप्टन जो है ना वो विरोध कर रहा है इस अकालियों को साथ में लेने का।
हाँ वो तो करेंगे ही,
कैप्टन विरोध
अकालियों ने इनके मोर्चा पूरा खोल के रखा था। वो जो बेअदबी वाला मामला था वो लगातार 4-5 साल सुखबीर सिंह बादल खूब चिल्लाता रहा था उस पर, तो ये तो एक दूसरे वहां पे लोकल राइवल तो ये है ही।
वो
बीजेपी वालों
अमरिंदर सिंह का जो विरोध है वो राष्ट्रवादी विरोध है। अमरिंदर सिंह राष्ट्रवादी व्यक्ति है।
हाँ राष्ट्रवादी आदमी,
और तो ये खालिस्तानी तमाशा जो कुछ भी करते हैं ये सब करते हैं अकाली। और यदि बीजेपी भी राष्ट्रवाद को पोषित करना चाहती है तो उसे अकालियों को बिल्कुल टच करना ही नहीं चाहिए।
हाँ सही बात है, वरना क्या होगा कि इन्हें साथ लेने से एक बार फिर इन्हें फिर ताकत मिल जाएगी। वो होता है ना कि जैसे उभर जाती है कि साहब वहां पे कांग्रेस को मौका, जैसे उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ जा रहे तो कांग्रेस को मौका मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, तो फायदा हो जाएगा वहां। तो कई दफा क्या होता है, जैसे तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की पार्टी क्यों उभर गई, अभी 2-2.5 साल सरकार चल गई उनके साथ नीतीश कुमार की, तो तेजस्वी में जान पड़ गई, वरना बाहर रहते तो कोई पूछता भी नहीं, संगठन भी खत्म हो जाता।
तो आइए फिर आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं
जी।
आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
नमस्कार।